ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7/92 को प्रातः लगभग 8:30 श्री राम द्वारा मथाड़िया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण 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 सच्चिदानंद घन परमात्मा को और मैं दो संतों को सादर अभिवादन कर आज कुछ बालकों के लिए बात करने के लिए प्रेरणा मिली है। छोटी अवस्था के बालक कहलाते हैं, दूसरे दिन के माँ बाप विराजमान हैं वे भी बालक ही हैं। तीसरे जब तक परमात्मा तत्व को प्राप्त न हो जाए तब तक वे बालक ही हैं। वृद्ध कई तरह से होते हैं, अवस्था से वृद्ध होते हैं, वर्ण से वृद्ध होते हैं, आश्रम से वृद्ध होते हैं, विद्या से वृद्ध होते हैं, धन से वृद्ध होते हैं, पद से वृद्ध होते हैं, परंतु सर्वे से ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान वृद्ध है, परमात्मा तत्व का बोध जिनको हो गया है, वे जितने वृद्ध है उनके सामने सब वृद्ध जितने जीव शिष्य किंकर शिष्य किंकर है वे मनुदास है दूसरे। तो वो वृद्ध अवस्था अपने को प्राप्त करना है। जैसे अष्टावक्र जी गए राजा जनक की सभा में तो दरबार ने रोक दिया, वो छोटी अवस्था थी, 8 वर्ष टेढ़े से ऐसे, तो कहा कि बालकों के भीतर जाने का यहाँ आज्ञा पत्र नहीं है, नहीं जाना चाहिए, निषेध है। तो दुर्भक्ष साहब ने पूछा कि बालक किसको कहते हैं? शरीर से बालक होता है कि बुद्धि से बालक होता है, ज्ञान से बालक होता है? ऐसी बातें पूछे दरबार ने कहा आप हजार वे गए तो लोग हंस गए, ऐसे टेढ़े ये यूं चले जो तो देख लोग हंसे। किसने कहा आओ महाराज, हाँ समारोह आया मैं आया, समारोह संबोधन दिया कि मेरे चमड़े की परीक्षा आपने करी ली, मेरे में क्या बात है क्या ना, वो तो पूछा ही नहीं, पहले ही हंसे तो समारी समारी इकट्ठे हुए यहाँ, तो चमड़ा ही चमड़ा देखते हैं चकरा गए लोग। तो वास्तव में बालक वे हैं जो परमात्मा तत्व को नहीं जानते। बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह, तो बालानाम सुख बोधाय क्या वो बोबा चूंते वैसे बालक वे हैं? अधीत व्याकरण न्याय शास्त्र वेदांत शास्त्र आदि जो अधीत हो और न्याय शास्त्र में अनगत हो उनका नाम बाल है। यहाँ ऐसे बाल वर्ष किया गीता में आया है, संघ योग पृथक बाला प्रवचन से न पंडिता एक मप्यास से सम्य गुरु और बिंद से फलम। संघ योग को बालक भिन्न भिन्न कहते हैं, पंडित नहीं कहते। पंडित नाम पंडा सदसत बुद्धि समझाता हस्य सब अलग पंडित सत असत नित्य अनित्य सार असार को जानने वाली बुद्धि जिसमें आ गई है वो पंडित होता है। पंडिता समदर्शिन समदर्शिन वो आज समवर्ति अर्थ किया जाता है कि विद्या विनय संबंध ब्राह्मण गौरी अष्टमी उसका पंडिता समदर्शिन तो सबके साओ खाओ पियो ये पंडित हैं। ये पंडित जन्मजात कुत्ते हैं। कुत्ता कोई जाएगा ब्राह्मण की रसोई में तो पैर धोर कर नहीं जाएगा किसी के यहाँ खा लेगा तो ये समता नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार है। ये तो कुत्ता बना है। समदर्शी न है समवर्ती नहीं सब में संपन्न यही तेज तस्कर को ये सांग सामने स्थित माना निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म निशेषिता यही सरकार उन्होंने यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। ये शाम मन साम्य स्थित जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित है और निर्दोष और सम ब्रह्म है ऐसा जिसका मन निर्दोष और सम हो गया है वे पंडित हैं। ऐसे तत्व की प्राप्ति वाले पंडित हैं। अब सब पंडित हैं तो सबके लिए बातें कही जाती है। थोड़ी बालकों की छोटी अवस्था वालों के लिए भी कहता हूँ विद्यार्थी को बहुत जल्दी उठना चाहिए। कम से कम सूर्योदय से आध घंटा पहले तो उठ ही जाना चाहिए। उठते ही कर दर्शन करना है भगवान को नमस्कार है पृथ्वी को नमस्कार करके फिर माँ को बाप को बड़े भाई भौजाई और जितने बड़ी बहना बड़े भाई उनको सबको नमस्कार करना। सबसे पहले त्वमेव माता जी उठते ही त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव ये श्लोक पढ़ जाना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। फिर चुट्टी पेशाब फिरते हुए पेशाब करके आवे तो हाथ पैर धो करके जल लेना साथ में उजड़ा ही कर लेना फिर हाथ पैर धो करके पैर धो लेना हो पेशाब करने के बाद हाथ धोना कम से कम 3 कुल्ला करना और पैर धो लेना। नल महाराज के पीछे कलयुग पड़ा था बरसों तक रहा उसको प्रविष्ट होने का मौका नहीं मिला। एक दिन लघु शंका करके पैर नहीं धोए उस दिन कलयुग प्रवेश हो गया। उसने बड़ा भारी दुख दिया। नवदमयंती कथा जानने वाले जानते तो ये शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है कि लघु शंका करके भी पैर धोना चाहिए। तटी पे साथ तटी फिरने पर हाथ पैर धोना चाहिए 7 बार तो ये 11 बार दोनों मिला करके हाथ धोना चाहिए और एक कम से कम 21 कुल्ला करना चाहिए। सवेरे मंदिर जाओ नहीं तो बड़ों को प्रणाम करो पाठ पूजा करो। विद्यार्थियों के लिए गीता है रामायण है इन धर्मों का पाठ सब भाई बहनों के लिए है। गीता रामायण का पाठ करना सभी बालक ही है। भोजन सात्विक होना चाहिए। नित्य कर्म करने के बाद भोजन करे तुम सात्विक भोजन हो राजस तामस नहीं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना सात्विक पुरुषों को कैसा भोजन रुचता है राजसी हो कैसा तामस हो इसका वर्ण सत्र में अध्याय में आ रहा है। तो ऐसे सात्विक भोजन उसमें खास बात है चार शुद्ध कमाई का पैसा हो और चीजें शुद्ध हो मांस मरिया लसन प्याज आदि शास्त्र निषिद्ध चीज न हो। पैसा शुद्ध और पदार्थ शुद्ध दो। तीसरा बनाया जाए स्नान करके कपड़े धोकर साफ पहन करके भोजन बनाया जाए और भोजन पहले भोजन में चौका लगाया जाए गाय के गोबर से उसे पर मांझ करके बर्तन साफ शुद्ध कपड़े बिल्कुल धोए हुए शुद्ध स्नान करके बनाना चाहिए और भोजन बनने के बाद बलि भी सदैव करना चाहिए मंत्रों से, वो नहीं तो कम से कम अग्नि में बिना नमक के ये चावल हो चाहे रोटी बिना नमक के हो उसमें घी और चीज डाल करके और विष्णु जी माना चाहिए अग्नि में डालना चाहिए। और भोजन करते समय भगवान को याद करके भगवान के अर्पण करके भोजन करना चाहिए। भगवान के अर्पण करने से भोजन शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ऐसे मंत्र पढ़ करके और आसमन करके भोजन करना। भोजन से पहले आसमन और भोजन के बाद आसमन, फिर हाथ धोकर कूला करना। भोजन से पहले भोजन पानी आसमन है वो भी भोजन का वस्त्र है और भोजन के बाद आसमन करना ये भोजन का वस्त्र है, नहीं तो भोजन नंगा होता है। बिना आसमन के भोजन नंगा है, जैसे आदमी कपड़ों के बिना नंगा होता है ऐसा नंगा भोजन होता है। ऐसे भोजन करके फिर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, ठाकुर जी को नमस्कार करना चाहिए। स्कूल में जावे तो माँ बाप को नमस्कार करके फिर जावे, वहाँ जावे तो अध्यापकों को नमस्कार करना चाहिए, फिर वहाँ स्तुति प्रार्थना करके अपनी अपनी कक्षा में बड़े प्रेम से रहना चाहिए, स्वच्छता से रहना चाहिए, कपड़े आदि साफ रखे, स्थान भी साफ कर रहे। स्कूलों के बीच में बालकों को चाहिए स्वयं सफाई करे, स्वयं झाड़ू लगावे, अपने स्वयं शुद्ध करने का मुहावरा रखना चाहिए। भगवान के नाम का जप करें, राम राम सबसे, राम सकल नाम अनते अधिका हो नाथ अग घग गणबधिका। तो राम मंत्र सीधा है, सुमेरे तो सुलभ सुखद सब कहूं, लोक लाह पर लोक निगाहू, राम मंत्र का। इसके सिवाय अपना जो इष्ट हो, माता पिता बता दे, गुरु बता दे, वो मंत्र जब कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए अपने गौ रक्षा करनी चाहिए, गौओं का पालन करना चाहिए, रोजाना गाय है बसड़े है उनको प्रणाम करना, गोबर डालना दूर, सारा साफ करना, गाय की जने के स्थान में बालू डालकर शुद्ध करना, गंदगी न रखना। ये बालक पहले करे तो बड़ा अच्छा रहे। पुरानी बहनों माताएं किया करती थी, ऐसे घरों में गौओं की सेवा करनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सबके साथ सहयोग रखे, प्रेम रखे, प्रेम का बरसाव, दूसरे के दुख में सहायक होना, मानुष दुख उनका बचाना, हरे को सुख पहुंचाना। ते प्राप्त वंशी माम एवं सर्वभूत रथा प्राणी मात्र के हित में रत होते परमात्मा को प्राप्त होते हैं। टीवी आदि देखने का व्यसन नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए खास कोई आवे तो वो ही देखना चाहिए, अध्यापकों को भी चाहिए कि ऐसा ही जहाँ विद्यार्थियों की खास शिक्षा हो, परीक्षा हो, प्रश्नोत्तर हो अध्यापक विद्यार्थियों के, वो ही टीवी देखा, और टीवी देखना नहीं चाहिए, दिखाना भी नहीं चाहिए। अध्यापकों को विशेष सावधान रहे, घर में गृहस्थों को भी सावधान रहना चाहिए, इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है, हो रहा है, टीवी के द्वारा बड़ा पतन हुआ है और पतन हो रहा है बड़ा भयंकर। क्यों दृश्य और श्राव्य दो तरह के काव्य होते हैं, ये दृश्य शिक्षा बहुत विशेष पड़ती है, गंदे गंदे विज्ञापन आते हैं, गंदे गंदे चित्र आते हैं, गंदी गंदी बातें आती है, उनसे अंतःकरण बड़ा गंदा हो जाता है। तो बालकों को बचाना चाहिए, अभिभावकों को चाहिए, अध्यापकों को चाहिए, माता पिता को चाहिए, बड़े भाइयों को चाहिए कि बच्चों को ऐसी गंदगी से बचाओ। उपन्यास है, गल्प है, ऐसी कथाएं है वे ठीक नहीं है, बहुत पसंद करने वाली। गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिए भक्तों के चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ है, और भी छोटी छोटी बालकों के लिए पुस्तक ऐसे है, बालक अंक निकला है वो बाल अंक पढ़ाना चाहिए, बालकों की शिक्षा की पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, तो बच्चों को अच्छे संस्कार पढ़े, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। खेल कूद आदि करना, उसमें भी पवित्र खेल खेलो, लड़ाई नहीं करना चाहिए और गाली नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उसमें खटपट हो जाए तो कुश्ती आ जाओ, पर खराब बोलो मत। खराब बोलने से जबान गंदी होती है, कान गंदे होते हैं, वायुमंडल गंदा होता है, कभी गाली नहीं निकालनी चाहिए। और दौड़ लगाना है, दंड बैठक करना है, त्याखा व्यायाम करना है, ये बच्चों से करवाना चाहिए, योगिक आसन करवाना चाहिए। सायंकाल भी संध्या करो, दिन में संध्या करो, रात्रि में सोने के समय भगवान को याद करके भगवान का नाम जपते हुए, उनके चिंतन करते हुए, भगवान के चरणों में सिर रखकर भाव से भगवान के चरणों में चित्र करके सोना चाहिए। कई कहते हैं कि रात्रि को सपना खराब आते हैं तो हाथ पैर धोकर साफ करके, फिर ठंडा नहीं पैर रहे, ऐसे पैर हो फिर सोए और पवित्रता रखे तो गंदे सपना नहीं आएगा। ऐसे समय भगवान को याद करें, भगवान से प्रार्थना ये करें कि हे नाथ, मैं अच्छा बनूं, आपके चरणों में स्थित रहे। सोते समय नींद आने से पहले जो समय होता है, जो चिंतन होता है, वो नींद खुलते ही होता है। वही चिंतन वास्तव में अंत समय में होता है जो भगवान की स्मृति करे। तो सोते समय याद रखने से भीतर स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर तक वो चीज पहुंच जाती है। वे ध्यान किए हुए मंत्र, चिंतन किया हुआ एकदम सेम पहुंच जाता है। कंठस्थ करना चाहते हैं जो विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को चाहिए सायं समय में उस दिन में याद कर ले, सुबह रटन करके याद कर ले, श्लोक पद जिसने याद कर ले। सोते समय उनको बिना पुस्तक आ जाए, बड़े अटकता अटकता कहीं आ गया कहीं नहीं आया भूल हुई, परंतु बिना पुस्तक कठिनता से एक पाठ करके सो जाओ, सुबह धड़ाधड़ ताजा आएगा, भूल नहीं होगी, करके देख लो। हमने करके देखा, बहुत जल्दी आता है, कारण की वो विद्या सीखी, विद्या भीतर बैठ जाती ठीक कारण शरीर तक। सूक्ष्म शरीर में आप जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर तक, और गहरी नींद में जाते हो कारण शरीर तक भी संस्कार बैठ जाते हैं भगवान को विद्या के। इस वास्ते खूब सावधानी से करें, अध्यापकों के साथ में आदर का सत्कार बर्ताव करें। कई स्कूलों में विद्यार्थी इकट्ठे मिल करके और विद्यार्थियों अध्यापकों को तंग करते हैं, ये बड़ी ही खराब बात है, उसकी विद्या सफल नहीं होगी। जो विद्यार्थी गुरुजनों का आदर करता है, विद्या पढ़ता है, उसकी विद्या सफल होती है। ऐसी शास्त्रों की बातें हैं, मैंने देखा है और सुना भी है, जिन्होंने आदर किया है उनके बड़ा लाभ हुआ है, निरादर करने वालों का तिरस्कार हुआ है। एक कृष्णानंद कर्ण फटा कृष्णानंद थे, बड़े अच्छे बाधांत न्याय पढ़े हुए थे, परंतु जहाँ जाते वहाँ उसका तिरस्कार होता। कणखल में रहने वाले केशवानंद जी महाराज भारत भूषण, और उन्होंने निराकार मीमांसा एक दर्शन लिखा, इतने विद्वान थे। उनके सामने वो कृष्णानंद कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तो कहीं निकालो उसको कुत्ते की कुपाली, ये खराब आदमी है, निकालो यहाँ। वो गुरु का निरादर किया, पढ़ करके गुरु जी से कहा कि मेरे शास्त्रार्थ कर दो। गुरु ने कहा कुत्ते की तरह भटकता फिरेगा। बड़े अच्छे विद्वान थे पर उनका आदर नहीं हुआ। एक आत्मानंद जी महाराज थे जिनके पास नारायण स्वामी मूलथान रथराम दरबार बड़े मानते थे, मेरे दर्शन किए हुए हैं। ऐसे मेरे दादा गुरु भी होते हैं, हमारे पंडित जी महाराज भी उनके पास पढ़े थे नारायण स्वामी। वो उर्दू भी जानते, फारसी थोड़ी जानते, संस्कृत बड़े विद्वान थे। उनके सत्संग में मुसलमान और हिंदू सभी आया करते थे, ऐसे बड़े विरुद्ध संत थे। तो वे ये शिक्षा देते थे, वे पढ़े थे, एक वृद्ध संत थे दादू पंथी, उनके पास उनके दमे की शिकायत थी। सेवा करते जब वे ठीक होते कहते कि नारायण आओ बेटा पढ़ लो, तब पढ़ते, नहीं तो सेवा में ही रहते। तो नामी संत हुए और बड़े व्यापक संत हुए, ऐसे विद्यार्थी हुए। तो अध्यापकों की गुरुजनों की सेवा करने से बहुत लाभ होता है, ऐसा करना चाहिए। मैंने देखे ऐसे, कलकत्ते में रहता था उन दिनों एक संत आए, बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, मूर्ति पूजा पर जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, तो मैंने कहा महाराज सुनाओ कुछ, तो सुनाने लगे, खड़े हो सभा में सुनाने लगे, वाल्मीकि के श्लोक सुनाए, धारा श्लोक, अब उनका अर्थ करने लगे, अब श्लोक नहीं उठता, अभी श्लोक पढ़ गए, अभी श्लोक नहीं उठता, तो बड़े कब जैसे कोई आंसू आ जाए, जैसी दशा हो गई उनकी, और वो कहते कि मेरे गुरुजी का साप लग गया, इस वास्ते मैं अब बोल नहीं सकता। फिर थोड़े बोले बैठ गए, फिर बात क्या हुई कि मैं पढ़ लिख करके गया था अपने गुरुजी महाराज, जो पढ़े लिखे नहीं धर्मासन भजन ध्यान करने वाले संत थे गुरुजी, उनके पास में गया, तो वहाँ कोई मकान बन रहा था, उसमें कहा कि मकान बनाओ, तो मेरे को भी कहा कि भाई ये थोड़ा सामान है, इसको देखो सामान ला दो, यहाँ प्रबंध कर दो मकान बनाने का। तो मैंने कह दिया कि ये तो कोई मूर्ख ही करेगा, कि तू ही मूर्ख हो जा, कह दिया। उसके बाद मैं घबराया, और उसी कारण से आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, परंतु बात पैदा नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को मैं पैरों पड़ा, प्रार्थना करी, तो वर्ष बचाया, उसमें कुछ वर्ष एक दो वर्ष कुछ बाकी बचाए, उसके बाद मैं गुरु जी के सही साथ नहीं, अब मेरे को मूर्खता बढ़ जाएगी गुरु जी के कहने से। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हमने, और ऐसी पक्की बात देखी है, जो विद्यार्थी गुरु की प्रसन्नता लेता है, संत महात्माओं की प्रसन्नता लेता है, उनको बिना पढ़े विद्या आती है। लोगों को हमने पढ़े हुए एक पंडित, वो मध्यमा और शास्त्री आचार्य, शास्त्री के आचार्य नहीं और शास्त्री पढ़ाने मध्यमा पढ़ाने वाले व्याकरण सिद्धांत को हमने पढ़ाते थे, मैंने देखा है। तो जो गुरु भक्ति होती है, गुरु का आदर करते हैं, उनको विद्या आती है स्वतः स्वभाव। शास्त्र में भी लिखा है गुरु शुश्रूषे या विद्या पुष्कले न धनेनवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम्। गुरु सेवा से विद्या मिलती है, अथवा धन बहुत हो तो धन दे करके और अध्यापक उसको विद्या मिलती है, अथवा अपने पास विद्या उनके पास नहीं है तो विद्या के बदले विद्या मिलती है, चौथा साधन नहीं है, ये विद्या के है। सबसे पहला साधन है गुरु की सेवा। गुरु की सेवा अंतर वस्त्र आदि से भी करना है, चरणों की सेवा करना है, स्नान कराना है, जल पाना है, सब तरह से पक्षापी आदि करना है, रामचंद्र जी करते थे विश्वामित्र का, ऐसे करना वो सेवा है। बढ़िया से बढ़िया गुरु सेवा है जो विद्या पढ़ लिए है वो पढ़ा हुआ पाठ याद करना खूब अच्छी तरह से, सभा के बीच में पूछे जाता फिर उसका उत्तर दे दे, ये असली गुरु सेवा है। अपना भी अच्छे विद्वान बनना है और गुरु सेवा का तरीका भी बढ़िया है। सभा के बीच में जब पूछे वो ध्यान से बता देता है तो गुरु जी कितनी प्रसन्नता होती है, हमारे को तो विद्या याद होती है और गुरु जी प्रसन्न होते हैं। तो पढ़ाए हुए विद्या खूब याद रखना है, अनभ्यास विषम विद्या, अगर अभ्यास नहीं करता है तो विद्या जहर की तरह हो जाती है, पुस्तक देखने का मन नहीं करता, ऐसी दशा होती है। इस वास्ते गुरु की सेवा है ये सबसे बढ़िया है। गुरु सेवा के विषय में माँ है, बाप है, बड़े भाई है, भौजाई है, ये भी गुरु ही है। तो माँ के चरणों में मस्तक टेक करके नमस्कार करना रोजाना, पिता के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करना, भाई भौजाई है, बड़ी बहन है, बड़े भाई है, उनको नमस्कार करना, काका बाबा बड़े बाप है उनको भी नमस्कार करना, चरणों में झुक करके हाथ जोड़ कर नमस्कार करना। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन बिटाए, जन्म जन्म मन मिट जाता है। एक ओ भी कृष्णस्थ कृत प्रणाम दशाश्वेधाव्य रहास्वेधि पुनरेत जन्म न कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध के स्नान का फल होता है, अश्व स्नान पूरा होता है, ये यज्ञ पूरा होता है उसमें स्नान करते हैं, तो अवभृत स्नान करते हैं। दस अश्व में मानो दस अवभृत स्नान के समान होते हैं, एक को भी कृष्ण से करते प्रणाम। दशाश्व में ही पुनरहित जन्म, वो तो फिर जन्म को प्राप्त होता है, प्रथम कृष्ण प्रणाम है पुनर्भाव आयो, भगवान को प्रणाम करने वाले का फिर जन्म नहीं होता। तो बड़े जितने भगवान का स्वरूप है साक्षात, उनका आदर करो, सत्कार करो, उनका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। तिरस्कार अपमान करने से अपराध होता है, अपराध होता है वो पाप से भी बहुत भयंकर होता है। पाप का फल भोगने से दूर हो जाता है, मैंने अपराध का दंड भोगने पर भी अपराध दूर नहीं होता। और अपराध अगर गुरुजन माफ कर दे तो मुफ्त में बहुत जल्दी अपराध माफ हो जाता है, दंड भोगना भी नहीं पड़ता। तो बड़ों का अपराध कभी ना करे, अवहेलना कभी ना करे, तिरस्कार कभी ना करे, उनसे बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। ये भी बात मैं जानता हूँ, मेरे को पता। केवल पुस्तकों की बातें नहीं है, ऐसी बातें है। तो ऐसे गुरु का अपराध न करो, उनके अच्छी तरह से आदर करो, सत्कार करो और बातों का आदर नोटिजा को ग्रहण करो। पास पढ़ने में लड़का लड़की उनको अलग अलग ही पढ़ाना बढ़िया है। आज की एक भयंकर प्रथा है कि छोटी अवस्था में बच्चों को और बच्चियों को अलग अलग पढ़ाते हैं, बड़ी अवस्था में सह शिक्षा देते हैं साथ मिला करके। महान भ्रष्टाचार होता है, इससे महान अन्याय होता है। इतने इतने अत्याचार हुए हैं जो कहने में शर्म आती है। मैं सभा में गर्भवती बन गई लड़कियां कुंवारी, ऐसी दशा हुई है, इसका दशा ऐसी बात, ऐसा नतीजा निकला है। फिर भी सरकार की बड़ी अच्छा बड़ी अवस्थाओं में सह शिक्षा करते हैं, साथ पढ़ाते हैं। साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, अलग अलग रखो, स्त्रियों के स्कूल अलग, बच्चों के अलग, लड़कों के। छोटी अवस्था में साथ पढ़ते कोई ऐसी हानि नहीं, मगर बड़ी अवस्था में नहीं करना चाहिए। आजकल जमाना बड़ा खराब है। 8, 10, 11 वर्षों के बालक मैंने नंगे फिरते देखे हैं। मेरी उम्र में छोरियां नंगी फिरती देखी हैं, उनके विकार नहीं है, खेलते हैं मस्ती से 10-10 वर्षों के। आज छोटे छोटे बालकों को भी मेकअप पहना देते हैं, लंगोटी दिला देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं। आज बहुत ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वैसी बुद्धि शुद्ध नहीं है पहले जैसी। इस वास्ते सह शिक्षा नहीं करके अलग अलग ही शिक्षा देनी चाहिए। माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, उससे बहुत लाभ होता है। सेवा करने से जैसे कोई बर्फ होती है वो टपकती नीचे की तरफ आती है, ऐसे गुरुजनों में जो तेज है, तपस्या है, विद्या है, उनके चरणों में नमस्कार करने से, उनके चरणों को धारण करने से, चरणों की रजि चरणों का जल पर धारण करने से विद्या आती है, उनका तेज और विद्या सत्य आती है। गुरुजन के याद करने से विद्या आ जाती है। गुरु आज्ञा पालन की एक बात याद आ गई बीच में ही। ये सांदीप नहीं थे जो उज्जैन में रहते थे, कृष्ण भगवान के गुरु बने हैं सांदीपनी। ये पढ़ते थे तो बहुत बढ़िया बुद्धि नहीं थी और घटिया भी नहीं, मध्य दर्जे की बुद्धि थी, ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि नहीं थी। परंतु गुरु सेवा बहुत करते, जो गुरु कह दे वैसे ही कर देना, कुछ भी कह दे जो गुरु कह दे कर देना। आप लोगों को मैं नहीं कहता हूँ ऐसा ही करना चाहिए, परंतु उनकी बात ऐसी है, गुरु ने कह दिया वैसे ही करते। गुरु आज्ञा पालन में सबसे तेज थे वो। तो गुरु जी ने परीक्षा करी कि कैसी आज्ञा पालन करते हैं। तो एक दिन विद्यार्थी बाहर घूम कर आ रहे थे और सामने मिले हमारे कि बेटा इस घर के आग लगा दो। चर्चा आग लगा दी और महाराज रहते सोरा सोरा बुझा बुझाओ आग लगा दी, इसने आग लगा दी। आए सब महाराज आग बुझाई और उस लड़के पान ना मारो मत पीछो मत ना, मना कर दिया। कहा नहीं कि महाराज आपने ही कहा तो बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले, मार से हरी तिरस्कार से हर गया। एक दिन गुरुजी का बच्चा था, वो गृहस्थाश्रम में थे, तो गुरु जी का बालक खेल रहा था, संदीप ने हमारा इस बालक को कुएं में डाल दे, चट उठा कुएं में डाल दिया, लगे बाल डालता है तो सुधीर पूछा चट उठा वो लिया मारना नहीं मारा नहीं, ऐसा नहीं बोले कि मेरे को आपने ही कहा था आज्ञा हुई, बोल चुप मार खा ली तिरस्कार से ले कुछ नहीं। विद्यार्थी पढ़ पढ़ कर चले गए, महाराज बीमार हुए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो जितने विद्यार्थी पढ़े सबको बुलाए, वे पंडित बन गए, कहीं कुलपति बन गए, कहीं अध्यापक बन गए, कहीं कथावाचक बन गए, क्या व्याख्यानदाता बन गए, बड़े बड़े गुरु बन गए, कहीं ऐसे पंडितों को बुलाया, सब आए, सब आए तो महाराज ने किसी को आसन दे दिया, किसी को अपने आचमनी दे दी, किसी को पवित्र होती है एक डाब की बनाई हुई अंगुली पहन दे वो पवित्र दे दी, किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आसन दिया, कुछ थे ऐसे दी सबको ही, सब वे पंडित बड़े बड़े पंडित थे, गुरु महाराज की दी हुई प्रसादी वह जान करके छोटी 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 चीजें भी बड़े आदर से दी। संदीप नहीं आए, महाराज कहने लगे बेटा तेरे को क्या दू, मेरे पास तेरे को देने की कोई चीज नहीं है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकीनाथ परमात्मा स्वयं तेरा चेला बनेगा, ये आशीर्वाद दिया, जिसे कृष्ण भगवान ने जाकर वहां अध्ययन किया शांति देवी के पास, तो गुरुजनों की प्रशंसा से उनकी प्रसन्नता से कितना लाभ होता है जिसका ठिकाना नहीं है, अगर उनका तिरस्कार करे और अभिमान करे तो कनफता कृष्णा नदी की तरह भौंकता फिर कोई आदर नहीं करता, बड़े अच्छे विद्वान होने पर भी उनकी विद्या निष्फल होती है, ऐसे गुरु भक्ति करते हैं उनकी विद्या बड़ी विलक्षणता से सफल होती है, उस चमक उठता है संसार में, ऐसी बात है, गुरु सेवा करना सबका काम है, तो गुरु सेवा में माता पिता की सेवा है, ये पहले गुरु है, सबसे पहला गुरु माँ होती है, माँ सब कुछ सिखाती है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, विद्यार्थी को जो पढ़ा करके और घर पर भेजते हैं स्नातक बनाते हैं तो अंतिम ये अंतिम उपदेश है स्नातकों के लिए, जो स्नातक होते हैं ब्रह्मचारी से तो सबसे पहले मातृदेव भव ये बोले, माँ को साक्षात परमात्मा देव शब्द या परमात्मा का भाषक है देवता का नहीं, तो माँ को तुम साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव अतिथि हो, चार बताए माँ बाप आचार्य अतिथि इनको साक्षात भगवान का स्वरूप समझो, ये दीक्षांत भाषण है ये महाराज ने मुझे दिया है, तो विद्यार्थी इनको सत्यम बद धर्मांचर ऐसे ऐसे स्वाध्याय माँ प्रमद अहर श्रद्धा उपवासी सब ये उपनिषदों में दीक्षांत भाषण है, तो ये बातें करनी चाहिए, इसने से कहा है रोज ना अपने माता पिता को नमस्कार करो, आचार्य को अतिथि घर पर आवे तो उसको साक्षात भगवान का स्वरूप समझो, ऐसे समझो उनका आदर करो सत्कार करो, गृहस्थ का खास धर्म है बालकों को भी चाहिए उनकी सेवा करे, कोई आ जाए घर पर अपने श्रद्धा से धुलने पानी साथ रहो श्रद्धा सारूवा में आए घर में गाती थी आवे उसे ऐसा करना चाहिए, ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरु पोष का अद्भुगा क्षीर वृत्ति सदे थे भिक्षु का स्मरता छह भिक्षु गए, ब्रह्मचारी सन्यासी और रस्ते चलता हुआ और जिसका सब कुछ लूट गया पास में कुछ रहा, ये छह होते ब्रह्मचारी यथेश्वर विद्यार्थी और गुरु पोष का अध्व का खीण व्यक्ति से शरीर से भिक्षु का भिक्षु के शरीर का माध्यम है, ऐसे घर पर आ जा तो उनका वाणी से नहीं केवल हाथ से कुछ कुछ देना सत्कार करता, एक दिन आया है ब्रह्मचारी यसे सेवा पकवान स्वामी ने उठो तयो रन से भुक्ता चांद्राणी शरीर गृहस्थ भाई बहन भी सुन रहे, जिसके घर पर कोई अतिथि आ जाए साधु संन्यास आ जाए भूखा आ जाए और उन अन्न नहीं दिया जाए तो दोष बताए, अगर अस्थिर यश भगना आशा भंग हो जाए, गुस्सा आ जाए तो पुण्य मार्ग आएगा क्षति। ब्रह्मचारी पकवाना स्वामी ना गुरु तय मजत्वा भुगतवा चांद्राणी शरीर, एक भी अतिथि अगर खाली चला जाए तो उस मालिक को चांद्राणी बस महीने भर का चंद्रमा की कला की तरह ग्रास को घटाना बढ़ाना होता है। ऐसे चांद्राण वर्ष करे तो उसकी शुद्धि होती है, इतना दोष लगता है। कुछ कुछ भी पास में नहीं रखते, गांठ गिरा नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे भरे मत जो भूखे रह जाए। ऐसे गृहस्थों घर पर आवे तो उसको अन्न जरूर देना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि आसन देवे चरण धोवे नमस्कार करे, नमस्कार से बड़ा भाई लाभ होता है। एक दिन मिकंडू ऋषि के यहाँ पर संत आ गए, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो उनका लड़का था मारकंडे, उसे सब देखा तो देखते ही रह गई, देखते रहे। उसने कहा कि महाराज क्या देखते हो कि बच्चा तो अच्छा है परंतु इसकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है, ये तो मर जाएगा, तो महाराज क्या करें। तो कहा कि जो कोई अतिथि आवे, साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गौ आवे, उनको नमस्कार कराओ। तो वो नमस्कार करने लगा, सबके चरणों में नमस्कार करने लगा। ऐसे में एक दिन सप्तऋषि आ गए, सप्तऋषियों के चरणों में नमस्कार किया। कौन कहे चिरंजीव भाव चिरंजी रहो, एक ब्राह्मण आशीर्वाद दिया करते हैं। तो उसके पिता बोले महाराज आशीर्वाद तो दिया है पर उम्र कितनी आपने ख्याल किया। तो क्या ख्याल किया भाई, उम्र तो बहुत थोड़ी रह गई, तो महाराज क्या करेंगे, आपने आशीर्वाद दे दिया। तो उसको शिवजी का मंत्र दिया, शिवजी का मंत्र दिया और अपना नमः शिवाय और शिव जी की उपासना बताई कि तुम उपासना करो। तो ये उपाय बताया कि तुम नमस्कार कराओ, केवल नमस्कार ही नमस्कार। उनसे उन्हें आशीर्वाद दिया और वो शिव जी पास गए जमराए वहां रहने के लिए, भैंसे पर चढ़े हुआ है। तो शिव जी प्रकट हो गए, त्रिशूल मारने लगे कि महाराज आपकी आज्ञा मैं पालन करता हूँ। महाराज तुम कितने ऐसी उम्र कहाँ बनाए, वो चिरजी भी हो गए, मारकंडे ऋषि चिरजी भी हो गए नमस्कार करने से। तो नमस्कार की बड़ी भारी वृक्ष महिमा है, बड़ों के चरणों में नमस्कार करने से उनकी जितनी तपस्या है त्याग है विलक्षणता है वो अपने को प्राप्त होती है। तो बच्चों को विद्या स्वतः आवेगी, स्वाभाविक आवेगी, विद्या पढ़ने की बात आती है। बचपन में हमने सुनी थी वो भी याद आ गई, विद्या विद्या आवरी सरस विद्या आवरी, एक विद्या खोटी गुणा पंक्ति चोटी, चोटी करे सम सम विद्या आवे घम घम। गुरु सेवा में विद्या आती है, धमक गुरुओं की सही है चेला, धमक गुरुओं की सही है। गुरु गिर भी गुरु नाम परुक्षा सदा भी तिरस्कृता जानते नरा महत्व अलब्ध शान कृष्णा नृपा नाम न जात मोलो मणियो बसंती। गिर भी गुरु नाम गुरुओं के जिगीर है वाणी, परुषाक्षर जिसमें कठोर कठोर अक्षर भरे हुए हैं, ऐसी कर्मी सुबह जैसी जैसी बात कहते हैं। गिर भी गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता, उसे तिरस्कृता जानते नरा महत्व, वे गुरुजनों से तिरस्कृत हो वाणी से और उनकी सह लेते विद्या पढ़ते हैं, महत्व जानती बड़े पद को प्राप्त हो जाते हैं। दृष्टांत दिया कि मणि निकलती है पर्वत में, उसके ऊपर रहता है बहुत मैल लगा रहता है, उसको पहले क्या करते हैं, ये सांड होते हैं खुरसाण सर्दिश में चक्कू लगाते हैं, पासना लगाते हैं, कैंची लगाते हैं, वो शाण कहते हैं, खुरसाण कहते हैं, पर ये संस्कृत में उसका नाम शाण है। तो उस शाण के ऊपर मणि को चढ़ाया जाए, उससे उसका मैल दूर किया जाए, सर सर होता है चिणका, चिणगारियां ऊपर से ऐसा रगड़ रगड़ती है। तो वे चिणगारियों ऊपर जैसी मणि के ऊपर घर्षण होने से वो मणियां राजाओं के मुकुट पर देती है। अलब्ध शाणोत कृष्णनाथ, अगर वो लब्ध नहीं हुआ है, शाण कृष्ण नहीं हुआ, नजात मणियों मणियो नजात मौलो मणियो बसंती, उनके मस्तक पर मन नहीं चलती जब तक घर्षण करके पक्की नहीं हो जाती। ऐसे विद्यार्थी है गुरु चरणों की तास है, वो अगर सहने और प्रशंसा पूर्वक करे तो उनका ऐसा तेज बढ़ता है जो मणि जैसे घर्षण से शुद्ध होकर वो राजाओं के मुकुट पर चढ़ती है। इस तरह से लोगों में वो मुकुट मणि हो जाता है गुरु कृपा से। इस वास्ते गुरु की आज्ञा पालन करना और गुरु भी गुरु परुषाक्षरा भी तिरस्कृत राजा नरा महत्तम, तो बड़ों की सेवा करने से उनकी आज्ञा पालन करने से और धमक गुरुओं की सही है वो सहनी से बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। ऐसे कई कई इतिहास आते हैं और अभी जीवित अवस्था में भी कई ऐसे सज्जन है जिन्होंने ऐसा किया है तो उनके लाभ हुआ है। इस वास्ते विद्यार्थी को चाहिए बड़े आदमी उनकी भी मैंने पहले कह दिया कि जिनके माँ बाप है बड़े हैं वे सब बालक हैं और ज्ञानी संत महात्माओं के सामने सब बालक है, अज्ञानी मात्र ही बालक है। जो तत्वज्ञ पुरुष है वे सबसे बूढ़े हैं, वे सबसे बड़े होते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार से जीवन सफल हो जाता है, जीवन चमक चमक उठता है। इस तरह से आपस में विद्यार्थियों और विद्यार्थियों को चाहे आपस में खेल कूद करे तो गाली न बोले और किसी की चोरी न करे, चोरी करने का बड़ा अनादर होता है और मुझे बड़ी हानि होती है। कलकत्ता में एक मैं घर में रहा था, छोरे थे छोटे तीन चार, वो एक दूसरा शांत हो गया, दूसरे सूर्य अब भी है बड़े हो गए, बेटा पोता हो गया उनकी, तो उनकी ऐसी बात थी लड़ाई होती उसमें उसको पूछ देते अपने दूसरों की साफ सच्ची सच्ची बात कहते कि मेरा कसूर है उसका कसूर है। तो बाड़ी भर में 15-20-20-50-50 घर रहते हैं, एक एक बाड़ी में कमरों में इतने घर रहते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते थे ये मेरे सामने की बात है। तो सच्चाई बोलनी, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप स्वयं बसते हैं, क्यों परमात्मा का सत्य स्वरूप है सत्यनारायण, कथा सुनिए सत्य नारायण परमात्मा सत्य है, तो सत्य से उसकी प्राप्ति होती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य सच्ची बात क्या है। और अध्यापकों से माँ बाप से मेरा कह रहा है कि बालक सच्ची बात कह दे तो कुछ मारपीट मत करो, सच्ची बात कह दी बालक है हो जाए कहा कलम टूट जाए, दवाजी फूट जाए, शीशी फूट जाए, लाल चैन का गोला टूट जाए, अब टूट गया तोड़ता तोड़े है तो उनको मारना चाहिए कि मेरे से टूट गया। वो बालक को तो सच्ची कह दे उसको माफी कर दो जिसमें सत्य का प्रसाद हो। सत्य बोलना खराब है और बोलना उससे भी खराब है, थोड़े से कह दे कि भाई तुम बात कह देना। एक बात घटना घटी, 14 साल घर में पिताजी घर में से एक आदमी आया बाहर से, वो कुछ चंदा मांगने के लिए उसका काम आया था, ठीक याद नहीं है, तो आया तो उसके लिए पिता ने कह दिया ऐसा कहते कि पिताजी घर पर नहीं है, तो उसने जाकर कह दिया पिताजी कहते हैं पिताजी घर पर नहीं है। महाराज जी भाई कैसा मूर्ख है, यह क्या करते है कभी ये कह तू बताना मत कह दिया। बालक से ऐसी रही, ये झूठ बोलने से झूठ सीखते हैं लड़के, अगर आप सच्ची बोलने रहो तो इनमें सदगुण सदाचार स्वतः सिद्ध है, आप कृति साध्य मानते हैं ये गलती, क्यों सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदास अमल है, ये निर्मल होते हैं, आपके आचरणों का असर निर्भर पड़ता है। बहनों माताओं से कहना है आप ख्याल रखो, गर्भस्थ बालक का भी ख्याल रखो, आप सामने तित्र अच्छा रहना चाहिए, चरित्र अच्छा रहना चाहिए, कोई खराब चीज नहीं होना चाहिए। जब गर्भवती होती है स्त्री तो उसके मन में कई तरह की बातें आती है, ये कोयला खा जाती है, मेट खा जाती है, चूना खा जाती है, रेत खा जाती है, तो उस वक्त में उनको अच्छी चीजें दो, अच्छा चित्र सामने रखो, चीज ये उनका खराब होता है तो बालक पर अच्छा असर पड़ेगा। घर में बालक को उस समय भी कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हो उनके सामने भी पति पत्नी को बड़े संयम से रहना चाहिए, उनको इन बातों का मालूम ही नहीं हो, ऐसे रखो तो बालक अच्छे होंगे। आज बालकों में दोष आते हैं, तो क्या कारण है उसका विशेष कारण है कि माँ बाप के चरित्र से देखते हैं वैसे सीखते हैं तो बच्चों में बड़ी बड़ी खराब कुटेव पड़ जाती है जिससे बच्चों का जीवन भ्रष्ट हो जाता है। तो ये ब्रह्मचारी बालक ब्रह्मचारी बने श्रेष्ठ बने जिससे कि देश होगा सब पवित्र हो। ये बालक है ये क्या है ये देश की संपत्ति है। आज आप गृहस्थों ने धन को तो संपत्ति माना है जमीन मकान को संपत्ति माना है मगर बालकों को ऐसी संपत्ति नहीं माना है। बालक रूपी संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है। धन बहुत हो गए पागल आदमी का हाथ आ क्या काम करेगा वो जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है धन से क्या होगा। और जो शुद्ध है बुद्धि धन नहीं तो कोई बधाई नहीं है। हमने गुरुजनों से बड़े से सुना है पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कपूत धन संचय का तो उड़ा देगा मरिया है मांस है व्यसन है जुआ है इनमें खेल करके धन को नष्ट कर देगा। और सपूत है तो आप सब धन आ जाएगा। सज्जन पुरुषों के पास में विद्या हो जाती विद्या विद्याति विनयम विनयाद्याति पात्रता पात्रता धर्म अपनी होती धना धर्मम तथा सुखम। विद्या पड़ जाएगी गुण अच्छे होंगे आचरण अच्छे होंगे साधुता होगी। वो गृहस्थों के साधुओं का कोई ठेका नहीं है कि साधुओं में साधुता हो। साधुता गुण है ये कोई वेश नहीं है। इस वेश में अच्छे अच्छे साधु हुए इस वास्ते हम लोगों को भी टुकड़ा मिलता है भाई साधु है पर साधु वेश नहीं साधु है। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश का ही कारण नहीं है स्त्री पुरुष का ही कारण नहीं है। सद्गुण सदाचार है जिसमें साधु परम कार्य में साधु जो उनादि मूल पर से होता है सारा साल संसिद्ध से तो परम कार्य परमात्म तत्व की प्राप्ति करे उसका नाम साधु है। तो ऐसे साधु पुरुष है उनके संग से बहुत भाव हुआ है। शशि पाप शशि ताप गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्प तरुष तथा पापम तापम च दैन्यं च हरित साधु समागम। श्रेष्ठ पुरुषों का संग है संतों का संग है गंगा पाप को दूर करती है। शशि शरीर जो गाता है तो ताप को शांत करता है और कल्प तरु दीनता दरिद्रता को दूर करता है। पर संतों का संग पाप और ताप दरिद्रता सुख को दूर करता है कि सत्संग करने से जब धन आ जाता है। अरे धन नाम धन की धनवत्ता नहीं है संतोष परमम धनम संतोष तुल्यम धनम वस्ति नान्यत संतोष के समान कोई धन नहीं है। तो मैं खेल भी ऐसा करूं जिससे विद्या बढ़े सिनेमा आदि देखने से चित्र देखने से खराब खराब उपन्यास पढ़ने से गल्प और ऐसी कथाएं कथाएं पढ़ने से अंतर्गुण मेला होता है। जैसा शास्त्र पढ़ता है उसी विद्या होती है वैसे ही मेरे आचरण होते हैं। इस वास्ते गीता रामायण आदि का अध्ययन करो संत महात्माओं की वाणी का अध्ययन करो। अच्छे अच्छे पात्र है कल्याण आदि जिनमें साधनों की बातें होती है जीवन के केवल उद्धार की बातें होती है ऐसा समझो। कल्याण जैसा कोई 1.5 लाख से ऊपर ग्राहक है उनके इतना वो आता है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं बाहर का विज्ञापन नहीं थी। कल्याण में गीता प्रेस की पुस्तकों का होता है बाहर का कोई विज्ञापन नहीं। विज्ञापन है तो लाखों रुपये मिलते विज्ञापन में परंतु पहले से कह देगा पर विज्ञापन छापना ही नहीं है तो किसी की खबर से विज्ञापन नहीं छापते। ऐसे ऐसे पवित्र पत्र है उनको पढ़ुआ तो उसे बड़ा लाभ होता है शिक्षा मिलती है। कई आदमियों को मैंने देखा है वो कहते हैं हम कल्याण पढ़ते हैं कल्याण के जो आइए कई कई इतना जोर लगाते हैं ये बात है सच्ची है साहब कल्याण में लिखी है कल्याण में पढ़ी है ऐसा प्रमाण देते हैं उसका इतना आदर है। कारण क्या है क्योंकि संसाधक थे संस्थापक थे श्री जयदयाल जी गोविंद का मूल एक उनका उद्योग है ये बड़े तत्व के पुरुष है। कल्याण शुरू किया गीता प्रेस की स्थापना उन्होंने की परंतु उनके वंश का भी आज कोई वहाँ अफसर बन जाए ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं। अपने स्वार्थ की कोई भावना उन्होंने नहीं रखी केवल परमार्थ की भावना भगवान की भक्ति का ज्ञान का सद्गुण सदाचारों का प्रचार करने के लिए कल्याण निकाला। सत्संग कराते थे तो सज्जनों ने कहा कि सत्संग के द्वारा प्रचार बहुत थोड़ा होता है, अगर आपका पत्र निकले कोई ऐसा समाचार उसमें पत्र तो बहुत प्रचार होगा। तो उन्होंने कल्याण को निकाला। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ये उनके माँ से ही भाई थे, ये हमारे संपादन कौन करे, तो हनुमान प्रसाद जी बैठे थे कि आप लिखवा दो, संपादन मैं कर दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, संपादन मैं कर दूंगा, ऐसे कल्याण शुरू हुआ। तो संपाजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जयदयाल जी को गुरु मानते थे और उन्होंने जय दयाल देवा परम गुरु परम देव देवा पद बनाए हैं, जो पद संग्रह में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जय दयाल जी की शिक्षा, जय दयाल जी का कारण ही मेरे मेरे सामने देखी हुई बात है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी को भाई जी कहते लोग, सभी भाई की तरह बर्ताव करते थे तो भाई कहते थे लोग। तो भाई जी तैयार हो गए, मैं तो एकांत जाऊंगा भजन करूंगा। कर्णवास में सत्संग था, उस समय भाई जी का पत्र आया मेरे सामने की बात है, कहते मैं अब ये संपादन कार्य नहीं करके एकांत में जाकर भजन करूंगा। पत्र में लिखा कि मेरा भजन करने का विचार है, भगवान की भक्ति का प्रचार तो भगवान करे तो होगा, मनुष्य क्या कर सकता है, मैं तो अपना भजन ध्यान करूंगा। तो शेर जी ने पत्र लिखा था हमारे कर्णवास में, फिर कर्णवास आ गए थे भाई सामान लेकर के, पैसा वहां भेजा। शेर जी ने यह पत्र लिखाया शेर जी श्री जयदयाल जी ने कि भगवत भक्ति का प्रचार भगवान नहीं करते हैं, भक्ति के प्रचार करने का काम भक्तों का है, भगवान का नहीं है, इस वास्ते आपको करना चाहिए जैसे रहो। तुम कह रहे संपादक रहे, शरीर शांत होने पर ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में उन्होंने सभा में भी कहा था मेरे पिता तुल्य थे जयदयाल जी, अब उनकी आज्ञा से मैं बैठा हूँ और उनकी आज्ञा इस वास्ते जाई गीता प्रेस में बैठा हूँ। लेते कुछ नहीं थे, संपादन करते थे, सब काम करते थे, गीता प्रेस की जमीन में नहीं रहना, उनके मकान में नहीं रहना, रोटी अन्न जल कुछ नहीं रहना, और गीता प्रेस का काम करना। और शेर जी तो स्वयं करते ही थे, उन्होंने तो सभा में एक दिन कहा था वे जो कर्मचारी उनके सामने तुम बड़े भागी हो जो तुम्हारे को गीता प्रेस का अन्न मिलता है उसमें काम करते हो, बड़े भागी हो, हमारा भाग्य ऐसा नहीं क्योंकि हमारे पास रुपये बहुत है, हम कैसे गीता प्रेस का अन्न लें, तुम काम करते हो लेते बड़े भागी हो, ऐसे गीता प्रेस का काम करते थे, इस कारण से गीता में इतने सस्ती पुस्तकें और ऐसा सदाचार प्रसार होता है। मूल में तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष श्री थे, भगवान के दर्शन उनको हुए और हनुमान प्रसाद जी वो थे, परंतु हनुमान प्रसाद जी गुरु थे वो, तो उनकी बनाई हुई चीज होने से आज संसार में इसका मान है। विदेशों में बात होती है गीता प्रेस जितना काम करती है, ऐसी संस्थाएं बहुत कम है जो इस तरह से निःशुल्क में थोड़े मूल्य में शास्त्रों का प्रसार करते हैं। तो अच्छे अच्छे महात्माओं के द्वारा बहुत होता है, ये महात्मा जितने बने हैं अच्छे अच्छे वे सब बालक थे, बालकों ध्यान देकर सुनना, मीराबाई कर्मेश बाई कर्माबाई पूरी बाई आदि जो भगत हुई है वे भी सब बालिकाएं थी, छोटी बच्चियां थी, और वे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े भगत सब बालक थे। तो बालक को कभी हार नहीं लानी चाहिए कि हम कैसे बड़े बन सकते हैं, आप ही बड़े बन सकते हो क्योंकि आप बालक हो, बालक से ही बालक होते थे। तो जितने महात्मा संत हुए वे सब बालक थे, पर जितने बालक वे सभी बूढ़े बड़े महात्मा हो जाए ये नियम नहीं है, परंतु संत महात्मा हुए वे सब बालक थे नियम है, चाहे बालक अवस्था हमारी है ही। दूजी ने ऐसी कथा सुनी थी महाराज, दूसरे भक्त उन्होंने भी ऐसी कथा सुनी जिससे उनको बैराग्य हुआ, भगवान में लग गए। दूसरी की कथा सुनने से एक नाथ जी महाराज थे, ये पैठण में पढ़ते थे, इनके माँ बाप मर गए, बूढ़ी दादी के गोद में रहते थे, बूढ़ी दादी माँ ने पालन किया इनका, माँ बाप मर गए थे तब, एक नाथ जी महाराज तो 5 वर्षों के बालक से अच्छे ब्राह्मण उनको शिक्षा देते, कहानियां सिखाते और वर्णमाला सिखाते थे, और एक नाथ जी उनसे प्रश्न करते थे कई तरह के, तो ये शंकराचार्य भी कैसा बालक है, ये बिजली बालक है, वो कथा सुना दी ध्रुव जी की, ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, ऐसे 5 वर्ष के बाद कथा सुनी, कथा सुने तो रात में देखे 5 वर्ष, 5 वर्ष में हुई, अब मेरी क्या बात है, रात में दिन जी बूढ़ी माँ को छोड़कर चल दिए, मार्ग छोड़कर ऐसे जंगल में चले गए कि पैरों के चिन्ह को लेकर कोई आ न जाए, ऐसे महाराज कई दिनों से जाकर देवगढ़ पहुंचे, पैठन से देवगढ़, वहां पर जनार्दन पंत रहते थे, वो वहां पर मंत्री थे राजा के बड़े, वहां जाकर रहने लगे, वहां पढ़े और भजन सुनने लगे, वो महाराज जनार्दन पंत थे, उनको दत्तात्रेय जी के खास दर्शन होते थे, वो भजन स्मरण करते थे, एक नाथ जी महाराज को पढ़ाया करते, और एक नाथ जी महाराज को पढ़ा कर अच्छा किया, बच्चे अच्छे थे, वो नाथ था, तो एक दिन उन्होंने गुरु जी ने कहा एकाधा मंगाए कि बेटा देखो ये हिसाब है राज का, थोड़ा हिसाब करना ये तू ठीक कर दे, ठीक है महाराज, बैठ गया हिसाब करने को, तो महाराज 2-4 बार जैसा बैठा नहीं ठीक तरह से, भोजन करके बैठे तो प्यास लग गई, कहते प्यास में पानी पी लूं तो आलस आएगा, नींद आने लग जाए, सब नहीं होगा, जल नहीं पिया, प्यास ही कर रहे थे साहब, आधी रात्रि हो गई, गुरु जी उठे लघु शंका करिए, जार देखा तो एक नाथ बैठा उसी पास में हिसाब कर रहा है, जोर लगा रहा है, तो गुरु जी पास में जाकर खड़े हो गए, दीप के पास रखा गया है कि पास में रहने वाला आदमी नहीं जीता, अरे वो धुनी उधर लगी हुई थी, गुरु जी को देखा नहीं, देवियों से बात क्या हुई कि एक पाई की भूल थी, वो हिसाब में बैठ गई, ऐसे के लिए खुशी का ताल बजा हंसे, तो गुरु जी एक नंबर बोले जनार्दन पंत बोले क्या है का सच खड़े हो गए, क्या हो रहा है, किसका आनंद है कि महाराज एक भूल थी वो भूल निकल गई उसका, अरे एक छोटी सी भूल निकलने का भी इतना आनंद है, और अनाधिकाल से संसार की भूल पूरी निकल जाए तो ये होती है कृपा, ऐसे गुण कृपा होती है, तुम्हारा तो आप ये कृपा के ठीक है। दूसरे दिन सुबह जहाँ एकांत में भजन करते थे उसके बाद पैरा लगाते थे, वो एक नाथी महाराज कुत्ता है बिल्ली है कोई हल्ला न करे, आदमी को हल्ला न करे, पशु भी कोई हल्ला न करे, ऐसे रक्षा करते थे, वे उसमें समाधि लगाते भजन ध्यान करते थे। तो जिस दिन ये बात हुई उस दिन क्या हो एक पैसा भीतर आ जाओ, भीतर आ गए और दोनों दिन बैठ जाए बैठ जाओ, और वो महाराज भगत भजन करने लगे, दत्ता से महाराज प्रकट हो गए, साथ में कुतिया और वो प्रकट हो गए, दत्तरी पूछे कौन है, हमारा आपका ही है बालक है ये, ऐसे पढ़ता है यहाँ पर, हमारे यहाँ काम करता है, बहुत अच्छा है, बुलाया इधर आओ, एक ठीकरी दे दी, इस ठीकरी में इस कुतिया को दूर लाओ, तो एक नाजी गए कुतिया को दूर कर गए, दत्तात्रेय ने लिया कुछ दूध लिया, अरे बेटा ये तुम पी लो, इधर दूध पी लो, दूध पिया, पीते देखते उसको काम दे दू, देखने में कुतिया ठीक है, अब दूध लिया और काम दे दू साक्षात, और सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान हो गया, सच्चिदानंद घन परमात्मा का बोध हो गया कि महाराज ऐसा है, जाओ जाओ इस बंदा ये बड़ा है, पास में पार है, इस पर जाओ और कृष्ण भगवान का मंत्र दिया, कृष्ण भगवान का मंत्र जपो या जाओ तपस्या करो, वहीं चले गए, वहाँ एक गाय आती वो दूध दे देती वो पी लेते, वहीं भजन किया, वहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, तब गुरु जी के पास में आए, 24-25 वर्षों के हो गए जवान, ब्रह्मचारी थे तो वो इस तरह से रहते थे, अब पीछे वहां से कहा अब जाओ, वो जब दर्शन हो गए अब जाओ पृथ्वी प्रदक्षिणा करो, सब प्रदक्षिणा तीर्थों पर जाओ, तीर्थों चले गए, उस समय में वो ब्राह्मण वृद्ध दादी का भेजा हुआ पहुंचा कि हमने सुना यहाँ एक नाथ, हाँ एक आया तो था यहाँ, कि महाराज माँ बाप नहीं है, बूढ़ी दादी की आंखें चली गई है, बहुत वृद्ध थी, अब देखना बंद हो गया, एक आ मेरा एक आ मेरा एक आ ऐसे कर रही है, किसी इतने वर्ष यहाँ रहा कभी जिक्र नहीं किया, कि मेरे घर पर कौन है, माँ बाप है, पता ही नहीं। तब जब ये पत्र लिख दिया, उन्होंने पत्र लिख दिया, उसमें लिख दिया कि एका वहीं रहना आप, ऐसे लिख दिया पत्र। वो पत्र लेकर पहुंचे और कहा कि देखो पैठन में आएगा, मैंने जो बताया तीर्थ यात्रा की परिक्रमा उसमें पैठन भी आ गया है, वहां आ जाएगा तो आप उसको कह देना ये पत्र मेरा दे देना। एक दास जी महाराज घूमते हुए वहां आए तो बाहर भी बाहर ही ठहरे, वहां से गांव में भिक्षा कर गए। तो वो ब्राह्मण को ब्राह्मण ने देखा तो वो जवान हो गए, परंतु पता लगा गुरु जी ने कहा था कि इसलिए जवान हो गया रहेगा, तो पहचान लिया। पहचान के पूछा पूछा तो पता लगा तो वो भिक्षा के लिए जा रहे, इससे ब्राह्मण आ गया पीछे बैठे, क्योंकि ये पत्र है महाराज आप गुरु महाराज का, गद गद हो गए, नाचने लगे, गुरु महाराज का पत्र आएगा, वहां हमारा पंडित बड़ी कृपा करी, ऊपर दिया, फिर बैठ लगाया पशु, परिक्रमा करी, दंडवत करी, पशु को शीश पर चढ़ाया, फिर पढ़ा तो वहीं रहना, फिर वहीं बैठ गए, घर पर नहीं गए, फिर वहीं मकान बना, वहीं रहे, गुरु से मिलने के लिए भी नहीं गए, गए नहीं, तो वहीं रहना, गुरु जी ने आज्ञा दे दी, जहां पत्र मिला वहीं बैठ, बस यही रहना है। गुरु भक्ति एकनाथ जी के जीवन चरित्र में बहुत विलक्षण है, आप देखो तो पता लगे, पढ़ो तो। अब पुस्तक वो बहुत वर्षों के बाद अभी छप गई है, अब मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, एकनाथ जीवन चरित्र। ऐसे एकनाथ जी महाराज हुई गुरु भक्ति से बहुत विलक्षण पुरुष हो गए। जनार्दन बंधु एक जनार्दन में जाग उठा, ऐसी विलक्षण बात है, उनमें शक्ति आ गई गुरु जी, तो ऐसी बात है महाराज। बड़ों की सेवा से कितनी विलक्षणता होती है, गुरुओं की सेवा करने से आशीर्वाद मिलती है, उनकी विलक्षणता आ जाती है। एकनाथ जी महाराज बहुत विलक्षण गुरु थे। भावार्थ रामायण लिखा है, एकनाथ जी भागवत एकादश स्कंध का अपनी मराठी भाषा में अनुवाद किया है, वो भी छंदों में वो भी बनाया है, और बड़े अच्छे संत हुए। श्रीखंडिया नाम बन करके एक भगवान स्वयं श्रीखंडिया बन करके वो नौकरी करते थे, ऐसे एकनाथ जी महाराज हुए। तो ये गुरु सेवा से बहुत ज्यादा लाभ होता है।